दूसरी बात देखिए कि जब आपकी कोई चीज खो जाती है, पहली बात इसलिए कही कि आप ये ना सोचें कि दीन का काम करने वालों को कोई तकलीफें नहीं आती। पहला कोर्स अब अमेरिका में शुरू किया था हमने, अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोर्स था शादी के कुछ महीने के बाद। नई नई शादी थी, सारे हालात थे माशाल्लाह, और ओपनिंग डे था, स्कूल में गए हुए थे। वो लंबी कहानी है, पीछे स्टूडेंट्स को मैंने सुनाई है एक आध बार भी, लेकिन सिर्फ आपको ये बताती हूँ कि सिर्फ वो जेवर जो मैंने उस दिन पहना हुआ था उस फंक्शन में जाने के लिए, मेरे घर से A to Z इच्छी बिच्छी चोरी हो गई थी। इच्छी बिच्छी मेरे मैके का, मेरे ससुराल का, पैसे, लेदर जैकेट्स और कुछ ऐसी चीजें कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता। किसी चोर को पता होगा कि इस वक्त फ्लायर बट्टे में हम सब स्कूल में थे और एक मस्जिद थी वहां, उस वक्त कोर्स हुआ, पीछे से मेरा सारा घर साफ हो गया, जिसमें इतनी यादगिरें। आपको पता ही हम लोगों का जो बुरा हाल है, शादियों पे किस किस का जेवर हमारे पास नहीं होता, ये मामों की निशानी, ये बाप की है, ये भाई की शादी के, ये यानी मैं कह सकती हूँ कि एक एक चीज मुझे अब तो मुझे कभी परवाह भी नहीं हुई, तब भी नहीं हुई, उस दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो चीजें थी कि मैंने बस चंद चीजों पे अल्लाह को कहा था कि अल्लाह मैंने ये जन्नत में जरूर लेनी है। मुझे ऐसे लगा अल्लाह ने मेरे हाथ खाली कर दिए, कब इन हाथों में बस्ता पकड़ो, क्योंकि शादी नहीं थी, अलग घर था, तो उसमें फिर ले लेके फिरती रहती थी, जहां जाना है परस में लेके फिरे कि डर था, और वहां हालात बड़े खराब है, अल्लाह किसी को बस में ना डाले, चोर ने आज तक किसी ने रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की। तो मैंने सुना कि वहां रिपोर्ट दर्ज होनी छूट गई है कि जब पकड़ ही नहीं सकते तो हम पुलिस क्यों आए, 4 घंटे के बाद तो पुलिस आती है। तो याद रखिये कि इस यकीन पे है ना कि वो फिर मिल जाता है, कुछ नहीं जाता, सब्र करके देखे और आप देखें कि सोना चांदी तो बड़ी छोटी चीज है। मैं सोने को लेकर जान पे रखती, मुझे आज भी याद है कि जब ये सारा वाकया हुआ और उसके बाद एक बच्चा गली का पढ़ने आता था, जब शाम को आए घर का हाल जो देखा वो एक लंबी कहानी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको जिक्र करना भी मुझे ना शुक्रिया लगेगी जो अल्लाह ने उसके बाद नेमतें दी। तो किसी को नहीं पूछा, सामने एक अपना बक्सानी घर था उनसे पूछा कि आपने किसी को आते जाते देखा है, सिर्फ वो वाहिद घर था जिधर बात हुई। थोड़ी देर में एक बच्चा मेरे पास आता था, उसकी माँ ड्रॉप करने आई, किसी से जिक्र नहीं किया, वहीं बैठ के उसको पढ़ाया, हालांकि अभी घर में ऊपर सब बिगड़ा था, पुलिस उसके बाद आई रिपोर्ट लेने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने अपना काम नहीं छोड़ना, उस बच्चे को पढ़ाया, उसकी माँ से जिक्र नहीं किया। शायद मेरा ले 8-10 साल तक तो अपनी सास से भी छुपा, किसी को नहीं बताया, सास को बताया ही नहीं, कैसे बताते, उनका दिल टूटता, कोई खुशी की बात थी जो उन्होंने मुझे दिया वो गया, मेरे मियाँ ने दिया वो गया, सब गया, मुझे कोई केयर नहीं है, इसलिए कि मुझे अल्लाह ने उससे बड़ी चीज दे दी। वो एक घराने को जो पता था उसके थ्रू पता नहीं कई सालों बाद मेरी सास को पता लग गया, ये बात जरूर होती है हमारे कल्चर में। तो लेकिन खुशी कोई बात नहीं, और यकीन है, मौत की तरह यकीन है कि वो सब चीजें उससे बहुत हसीन बन के जन्नत में मेरे लिए तैयार है, और मुझे कोई उसकी परवाह भी नहीं है, उस वक्त भी नहीं थी। तो सब्र कर लेंगे तो फायदा, लेकिन अगर मैं इल्जाम लगा दूं किसी पे और उसने वो नहीं किया, जब तक मेरे पास सबूत ही नहीं मैं कैसे कह सकती हूँ। रिवायत में आता है कि किसी मुसलमान के ऊपर बात करने से पहले 100 उजर लाओ, कभी अपनी मासियों पर इल्जाम न लगाएं, ये मस्कीन सी मासियां अगर मजलूम हुई यकीन करिए कल हमारी नेकियां लेंगी। और सच्ची बात है, मिलना तो है नहीं था तो मुझे शोर करने का फायदा क्या होता। तो यहाँ इस सारे वाक्य को लेकर हम सब अपने लिए बंदगी का एक मामला लिखें। हम नमाजें शौक से पढ़ते हैं अल्लाह से अजर के लिए ना, रोजे शौक से रखते हैं अल्लाह से अजर के लिए, तरावी, उमरा, हज, तो अल्लाह की तरफ से दिए हुए नुकसान पूरे करें। एक दुआ है जो अल्लाह के नबी ने सिखाई, आप लोगों को भी आती होगी, नमाज के बीच में पढ़ते हैं, 2 सजदों के बीच की दुआ भी है ये, अगर आपने पढ़ी होगी, कि अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वाहदिनी वाफिनी वरजुकनी वजबुरनी, ठीक है, इसको मेरे साथ पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वाफिनी वजबुरनी। अल्फाज के फर्क से ये दुआ मुख्तलिफ जगह पे आती है, हमारे मौजू से मुतल्लिक आखिरी हिस्सा है कि वजबुरनी, ए अल्लाह मेरे नुकसान की तलाफी कर दे, अल्लाह आपके नुकसान की ऐसी तलाफी करेगा आप कभी सोच भी नहीं सकते। وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ غیب سے آپ کو ایسی چیزیں دے دیتا ہے کہ آپ ذکر کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دینا، میں نے کوئی ناشکری میں ذکر نہیں کیا، صرف سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ صبر کتنا ضروری، اور یہ بندگی کا نقطہ بہت اہم ہے۔ بعض عورتیں چھوٹا سا نقصان نہیں بھولتی، ساری زندگی پہ لگا رہتا ہے۔ تو بہرحال حضرت بنجامین پہ الزام لگا، کیسا ہوا کیا ہوا، لیکن وہ اب حضرت یوسف کے پاس رہ گئے۔ अब देखिए यूसुफ के मुंह पे लोग उनको चोर कह रहे हैं, एक तरफ यूसुफ को क्या कहते हैं, ये चोर है। अब जरा इंसान के इल्म की कमी देखिए, قالوا يا أيها العزيز، उन्होंने कहा ए सरदार ज़ी इक्तदार, यानी चुपके चुपके चोरी का इल्जाम बचपन में लगाया क्योंकि उनको पता नहीं, लेकिन चूं के मजबूरी है ना यूसुफ से कुछ लेना है तो कह रहे हैं ऐ सरदार ऐ इक्तदार। हकीकत में हम इंसानों के साथ यही दोगलेपन कर रहे होते हैं, दिल में उनके लिए कुछ और सोचते हैं और जुबान से उनको बड़ी इज्जत और मोहब्बत दे रहे होते हैं। क्या कहने लगे, इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपको बड़ा ही नेक नफ्स इंसान पाते हैं। यूसुफ ने कहा पनाह बा खुदा, दूसरे किसी शख्स को हम कैसे रख सकते हैं, जिसके पास हमने अपना माल पाया है इसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम हो जाएंगे। जब वो यूसुफ से मायूस हो गए, यानी यूसुफ ने कहा नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, तो क्या हुआ, इससे पता चलता है कि इस्लामी शरीयत के मामले में इंसानों की बात नहीं माननी चाहिए। जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे। इनमें से जो सबसे बड़ा था वो बोला तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह के नाम पर क्या दो पैमान ले लिए हैं, और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो ज्यादती तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। अब मैं तो यहाँ से हरगिज न जाऊंगा जब तक कि मेरे वालिद मुझे इजाजत न दें, फिर अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला फरमा दे कि वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम जाकर अपने वालिद से कहो कि अब्बा जान आपके साहबजादे ने चोरी की है। देखिए ये नहीं कह रहे हमारे भाई ने, आपके साहबजादे ने। जैसे औरतें बच्चों के बुरा काम करे ना तो शौहर कहती है आपके बेटे ने ये किया, और जरा अच्छा काम करे कहते मेरा बेटा कितना अच्छा है, अच्छा काम करे कहते ननिहाल पे गया, और बुरा काम करे कहते मेरी दादी है। अल्लाह अकबर, हमने इसे चोरी करते हुए देखा नहीं। नोट कीजिए ये जुमला, जब तक किसी को चोरी करते हुए देखे ना, कभी सोचे भी ना। और मैंने जो बात फील की है ना, 90% चीजें घर से मिल जाती हैं। कई दफा घूमती है मैं कहती हूँ परवाह नहीं, और वो मिल ही जाती हैं, इधर से उधर पड़ी होती हैं। अपनी चीज के बारे में इंसान केयरलेस होता है, तो जब तक देखा नहीं किसी के बारे में आप नहीं कह सकते, वरना क्यामत के दिन हमारी सारी नेकियां उधर चली जाएंगी। जो कुछ हमें मालूम हुआ हम बस वही बयान कर रहे हैं, और गैब की निगेबानी तो हम न कर सकते थे। आप इस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहाँ हम थे, उस काफिले से दरियाफ्त कर लीजिए जिसके साथ हम आए हैं, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। तो यूसुफ की दफा ये क्यों नहीं कहा था, सच्चे नहीं थे ना, कि जरा जाके चेक कर लें जहाँ यूसुफ को भेड़िए ने खाया वहाँ कुछ उसकी हड्डियां भी पड़ी हैं कि नहीं। इससे पता चलता है कि जब इंसान सच्चा होता है ना तो फिर वो हर मुमकिन कोशिश करता है अपने दिफा की। खैर, बाप ने ये दास्तान सुनकर कहा दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को सहल बना दिया है, अच्छा इस पर भी सब्र करूंगा और बखूबी करूंगा। क्या भाई कि अल्लाह इन सबको मुझसे मिला ले, वो सब कुछ जानता और इसके सब काम हिकमत पर मबनी है। फिर वो इनकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गए और कहने लगे हाय यूसुफ, कहना क्या चाहिए था, हाय बिन्यामीन। लेकिन पुराना गम याद आता है, कोई फौत होता है ना तो हमें पिछले याद आ जाते हैं, उस पे नहीं रो रहे होते जो आज गया, हमें अपने पुराने याद आते हैं। यही कहानी इंसान की, और जो गम दिल को लगा होता है ना वही याद आता है। लोग मैयत वाले घर में किसी दोस्त रिश्तेदार के जाते हैं ना तो रोते हैं, तो वो सोचते हैं इसको कितना गम है मेरी माँ के मरने का। वो उसकी माँ को कोई नहीं रो रहा होता, वो अपनी माँ को रो रहा होता है, फितरी बात है। हम अपनों को याद करते हैं, हाय मामू भी गए थे, हाय फलां भी गया था, तो हाय यूसुफ। इससे पता चलता है कि यूसुफ दिल में बैठे थे, वो दिल ही दिल में गम से घुटे जा रहे थे और इनकी आंखें सफेद पड़ गई थी। बेटों ने कहा खुदारा आप तो बस यूसुफ को याद किए जाएंगे, टोन देख लीजिए बच्चों की कैसी है। नौबत है आगे, ये किसके गम में आप अपने आप को भुला देंगे या अपनी जान हलाक कर डालेंगे। उसने कहा मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता, और अल्लाह से जैसा मैं वाकिफ हूँ तुम नहीं हो। ये जुमला बड़ा प्यारा है बंदगी का, मैं अल्लाह को ज्यादा जानता हूँ। देखिये जिससे दोस्ती होती है ना बंदा उसका मिजाज समझता, तो जब अल्लाह के बंदे आप बन जाते हैं, आपके अल्लाह से मोहब्बत के ताल्लुकात हैं, फराइज की पाबंदी है, इबादात पे है, तो आप कहते हैं मुझे पता है मेरा अल्लाह ऐसे मामले में मुझे नहीं पकड़ेगा। तो अल्लाह के साथ कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। मेरे बच्चों जाकर यूसुफ और इसके भाई की कुछ टोल लगाओ, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, इसकी रहमत से तो बस काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। तो ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, सब कुछ वापस मिल जाएगा इस दुनिया का खोया हुआ, आगे जाके तो मिलना ही है। जब ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ की पेशी में दाखिल हुए तो उन्होंने अर्ज किया कि ऐ सरदार बाइक्तदार, हम और हमारे अहलो इयाल सख्त मुसीबत में मुबतला हैं और हम कुछ हकीर सी पूंजी लेकर आए हैं, आप हमें भरपूर गल्ला इनायत फरमाएं और हमको खैरात दें। देखिए ये है एक अल्लाह बंदे की किसी की अना को तोड़ता। कल क्या कह रहे थे नहनु उस्मा, और आज क्या मुतसद्दिकीन। अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी पे न लाए कि आज आप किसी पे ज्यादती करें और कल फिर आपको उसके आगे झुकना पड़े। اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. یہ سن کر یوسف سے روحانہ گیا کہ میرے بھائی بیکاری بن گئے, کہ اب وہ پیسے بھی نہیں ہیں ان کے پاس کہ جس سے اللہ لا سکے, تو آج بھیک مانگنے لگے ہیں. اس نے کہا, تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ لیکن شرمندگی سے بچانے کے لیے ساتھ ہی کہنے لگے, ہاں جبکہ تم نادان تھے. دیکھیے, دوسرے کو ہر ممکن شرمندگی سے بچائیے. جب آپ اگلے کو شرمندہ کر دیں گے تو وہ آپ سے پیار کرے گا. بعض دفعہ ہم دوسروں کو شرمندہ کر کے کہتے ہیں آپ مجھ سے پیار بھی کرو, وہ نہیں کرے گا. ون ون پالیسی ایک پورا ٹاپک ہے جو ہم نورالا نور میں کرواتے ہیں اسٹوڈینٹس کو. ون ون, لیٹ اینڈ لیٹ ٹو لیو, جیو اور جینے دو. دیکھیے, ایک صورت ہے میں جیتی تو آپ ہارے, دوسری صورت ہے کہ آپ جیتے تو میں ہاری. دونوں میں کوئی نہ کوئی تو دکھی ہوگا نا. اور ایک ہے کہ آپ بھی جیتے میں بھی جیتی. بندہ یہ کیفیت کب لاتا ہے؟ دشمنوں کو محبت سے معاف کر دے. نہیں مجھے پتا اسی نے آپ بہت غصے میں تھے بھائی, اس لیے آپ نے یہ کہہ دیا تھا. نہیں مجھے پتا آپ کے سر میں درد تھا بھائی, اس لیے آپ نے مجھے کڑوا جملہ بول دیا تھا. شوہر کو, بیوی کو, ہر انسان کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں کہ جس دن انہوں نے میرے ساتھ کوئی بات کی, زیادتی کی, غصہ کیا, میرا کوئی مال لے لیا, کچھ کیا, نہیں مجھے پتا اس وقت ایسا نہیں. پھر دیکھیے آپ دلوں میں راج کریں گے. آپ اپنی انا کی دیوار اپنے اندر کھینچ کے بیٹھے رہے, موت آ گئی تو کیا ہوگا, فوراً اس بھائی کی لاش پہ پہنچیں گے. اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو وہ دور سے ٹکٹ کٹا کے آئیں گے, پھر بھول جائیں گے کہ بہن سے 3 سال سے نہیں بول رہے تھے اور بھائی سے 4 سال سے نہیں بولی تھی. تو زندگی میں اپنے معاملے ختم کریں اس سے پہلے کہ تم میں سے ایک چلا جائے. فوراً بھائی بہنوں کو بنا لے. روٹ روٹ کے رہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ پھر ہم خود بھی اپنی زندگی اجیرن کرتے ہیں. کوئی چیز جلتی ہے تو خود بھی تو جلتی ہے نا. تو لہٰذا دوسروں کو معاف کر دیں. یوسف علیہ السلام نے کہا, کوئی بات نہیں, تم نادان تھے. وہ چونک کر بولے, ہیں تم یوسف ہو؟ اب ان کو شک پڑا کہ ان کو کس نے بتایا, یہ معاملہ تو کسی کو پتا نہیں تھا. اور کہا, ہاں بے شک میں ہی یوسف ہوں. اچھا کیا کہا؟ انا یوسف. یہ نہیں کہا انا عزیز مصر, فلاں فلاں, پورا اپنا لقب لگاتے. آج لوگ اپنا تعارف کراتے ہیں, حضرت فلاں, شیخ, مجلہ, مقلہ, قبلہ, کعبہ, فلاں, محمد علی. تو اندر سے محمد علی نکلے اور شروع اور آخر میں کلاپے تھے. چھوٹی بات کریں, اپنا ٹائٹل بھی یہ نہ دیا کریں, میں فلاں فلاں, میں اللہ کی عاجز بندی, میں کمزور بندی, اور یہ میرا بھائی ہے, اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں سے نیک لوگوں کا اجر نہیں مارا جاتا. یہ ہے کلائمیکس اس کہانی کا. آپ کو یقین ہے قرآن سچی کتاب ہے؟ آپ کو یقین ہے جو اس میں اللہ نے کہا وہ سچ ہے؟ تو خود کو اس پہ کم از کم 5 سیکنڈ ذرا سوچئے. اگر میں نے کسی انسانی معاملے میں صبر کیا اور اللہ کے معاملے میں تقوی اختیار کیا تو اللہ میرا اجر ضائع نہیں کرے گا. تو پھر کیا دل کرتا ہے کہ لوگ مجھے ستائیں اور میں ان کو معاف کروں. دیکھیے ایک وقت ہوتا ہے ہم اپنی بات پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, آدھی بات سن کے کاٹ دیتے ہیں, نہیں میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے یہ نہیں کہا. اور ایک ہے بری بات سن لیتے ہیں, تھوڑا اور صبر آ گیا آپ میں. پھر تیسری بات ہے کہ بری بات سن کے بھی کچھ نہیں کہتے اسمائل. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ کوئی مجھے ستائے, مجھے کھپائے, مجھے دکھ دے اور میں اللہ کے لیے صبر کروں اور اس پہ احسان کروں. دوستوں پہ احسان کرنے سے کچھ نہیں ملتا, دشمنوں پہ احسان کرنے سے علم اور حکمت کے دروازے اللہ پہ کھول دیتا ہے. ڈھونڈے جا کے آج اپنے ان رشتے داروں, دوستوں, ساتھیوں کو جو آپ پہ نظر رکھتے ہیں, جو آپ کے خلاف باتیں مشہور کرتے ہیں, جو آپ کو پریشان رکھتے ہیں, اور ان کو تھینک یو لیٹر بھیجیں صبر کر کے کہ آپ نے مجھے صبر کا موقع دیا. اور رشتے تو ہوتے ہی صبر کے نام پہ. دوستوں کے ساتھ رہنا بہت ایزی ہوتا ہے لیکن رشتے داروں کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا اجر کی امید انسان کو اللہ کے حکموں پہ چلاتی ہے. لہٰذا فرمایا کہ میں صبر کروں گا. انہوں نے کہا, با خدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی ہے اور واقعی ہم خطا کار تھے. کتنے سال بعد یہ کریڈٹ ملا. صبر کر لیجئے. جو آج آپ کو باتیں کر رہے ہیں نا, آپ جھوٹی تھی, آپ کا قصور تھا, کل وہ کہیں گے نہیں قصور ہمارے بیٹے کا تھا, یہ بچی تو اچھی تھی, اس میں تو یہ خیر تھی. جوش میں آ کے ہم ہمیشہ اپنے آپ کو سچ کرتے ہیں لیکن ہوش میں آتے ہی ہمیں اپنی بہت ساری غلطیاں دکھتی ہیں. خیر انہوں نے جواب دیا, لا تسریبا, آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں. لا تسریبا علیکم اليوم, آج کے دن آپ کی کوئی گرفت نہیں. اللہ آپ کو معاف کرے, وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ایک سخت کام دے دوں آپ کو, बहुत सख्त है, शायद आधे लोग कल आएंगे भी नहीं इसको सुनकर। वादा करते हैं आएंगे इंशाल्लाह। किसी एक रिश्तेदार को आज बनाइए, किसी भी तरह जैसे भी कर सकते हैं, जिसकी गिरा दिल पे पड़ी थी। कैसे पता चलता कि किससे मैं नाराज हूँ? जो याद रहता कि मैं इससे नाराज हूँ। गिले शिकवे तो मैं सबसे ही है माशाल्लाह, छोटे बड़े तो चलते हैं, लेकिन पता है कि फलां भाई बहन चचा कजन खालू मामू किसी एक से नाराजगी है, आज उसको बनाइए। इफ्तारी भेज दे, फोन कर ले, कॉल करें जी, फोन भेज कर ले, व्हाट्सएप भेज दे, वाइबर कर ले, वोनेज कर दे, स्काइप पे मैसेज भेज दे जी। कोई भी नहीं है तो फिर किसी पे एहसान करें, किसी पे एहसान करें। एहसान करते हैं कि जो आपको सताएं आप उनको फायदा दें, आप उनको दुआएं दें, जो बददुआ दें आप उनको दुआ दें, जो आपकी बुराई करे आप उनकी तारीफ करें। मुंह से तारीफ करके देखें ये भाई बहुत अच्छे हैं, आप हूँ मैं क्यों करूँ, मुझे पता वो अच्छे नहीं है। और आप अगर पाएंगे हदीस में ऐसा इसका मसला मौजूद है कि अगर आप किसी को मनाए और वो आपको ना माफ करे, यानी बहुत बड़ा गुनाह है कि कोई आपसे माफी मांगे और आप उसको कि मैंने नहीं माफ करना, तो हदीस में आता है कि यानी जबरदस्ती किसी से खराज वसूल करना या भत्ता लेने वाले जितने का गुनाह उस शख्स को होगा जिसको कोई जाके कह दे सॉरी प्लीज फॉरगिव मी और वो कहे मैंने तुम्हें नहीं माफ करना। कितनी बड़ी बात है सबक में, हम कितने बड़े बंद कहते मैंने तुम्हें नहीं माफ करना, तो आगे से आप कहते अच्छा अल्लाह तुम्हें माफ ना करे। और कितनी हैरत की बात है सुबह शाम जो अल्लाह से मांग रहे हैं वो हम खुद नहीं देते दूसरों को। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्नी, पढ़े जरा अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्नी। ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ फरमा। इस दुआ को अपनी जुबान पर रखें, आप देखेंगे कि अल्लाह आपका दिल खोल देगा।